तुलसी की भावुकता का शेष अंश। हमारे लाला भिखारी दास जी ने इस उक्ति को पकड़ा और उसके ऊपर यह भारी भरकम ढांचा खड़ा कर दिया। आनन है अरविंद न फूले अलिगन, भूले कहाँ मन रात हो, कीर कहाँ तुही बाई भई, भ्रम बिंब के ओठन को ललचात हो। दासजू ख्यालु न बेनी रची, तुम पापी कलापी कहाँ इतराल हो। बोलती बाल न बाजत बीन, कहाँ सिगरे मृग घेरत जात हो। ऐसे संकट में पड़ी हुई नायिका शायद ही कहीं दिखाई पड़े। भ्रमर बाधा तक तो कोई चिंता की बात नहीं, पर उसके ऊपर यह सूक बाधा, मयूर बाधा और मृग बाधा देख तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे ही रहना पड़ेगा। बहुत लोगों ने देखा होगा कि भौरे आदमी के पीछे अक्सर लग जाते हैं, कान और मुंह के पास मड़राया करते हैं और हटाने से जल्दी हटते नहीं। इसी बात पर स्त्रियों में यह प्रवाद प्रचलित है कि जब कोई परदेश में होता है तब उसका संदेशा कहने के लिए भौरे आकर कान के पास मड़राया करते हैं। अतः इस प्रकार की पुरानी उक्तियों में जो सौंदर्य है वह हमें अतिशयोक्ति में न दिखाई देकर स्वभाव सिद्ध वस्तु द्वारा व्यंग हेतु उत्प्रेक्षा में दिखाई पड़ता है। जैसे भावरा जो बार बार मुंह के पास जाता है वह मानो मुख को कमल समझने के कारण छोटे छोटे संचारी भावों की स्वतंत्र व्यंजना भी गोस्वामी जी ने जिस मार्मिकता से की है उससे मानवीय प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण प्रकट होता है। उन्होंने ऐसे ऐसे भावों का चित्रण किया है जिनकी ओर किसी कवि का ध्यान तक नहीं गया है। संचारियों के भीतर वे गिनाए तो गए नहीं हैं, फिर ध्यान जाता कैसे? सीता के संबंध में राम लोक ध्वनिचरों के द्वारा सुनते हैं। चर्चा चरणी सो चरवी, जान मति रघुराई, दूत मुख सुनी लोक धुनी, घर घर नी बुझी आई। मर्यादा स्तंभ राम लोक मत पर सीता को वन में भेज देते हैं। लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आंखों में आंसू भरे लौट रहे हैं। इस अवसर पर दीन बंधु दयालु देवर देखी अति अकुलानी, कहती बचन उदास तुलसी दास त्रिभुवन रानी। ऐसे अवसर पर सीता ऐसी हृदय ऐसे अवसर पर सीता ऐसी गंभीर हृदया देवी का यह उदासी भाव प्रकट करना कितना स्वाभाविक है। तौ लौ बलि अपुही किबी बिनय समुझी सुधारी, ज्यों ल्यों हौं सिखी लेहूं बन ऋषि रीति बसी दिनचारी। तापसी कहीं कहा पठयती निप्रणी को मनुहारी, बहुरी तिही विधि आईन कहिए साधु कोई हितकारी। पृष्ठ 68। लसन लाल कृपाल निपटही डाबरी न बिसारी, पालबी सब तापसनी ज्यों राजधर्म बिचारी। सुनत सीता बचन मोचत सकल लोचन बारी, वाल्मीकि न सके तुलसी सो असनेह संभारी। काव्य के भाव विधान में जिस उदासीनता का सन्निवेश होगा वह खेद व्यंजक ही होगा। यथार्थ में उदासीनता न होगी, उसे विषाद क्षोभ आदि से उत्पन्न क्षणिक मानसिक शैथिल्य समझिए। कैकेयी को समझाते समय मंथरा के मुख से भी उदासीनता की व्यंजना गोस्वामी जी ने बड़ी मार्मिकता से कराई है। राम के अभिषेक पर दुख प्रकट करने के कारण जब मंथरा को कैकेयी बुरा भला कहती है, तब वह कहती है, हमहूँ कहब अब कठुर सुहाती, नाहीं तब मौन रहब दिन राती। कौन प्रहोऊ हम ही का हानि, चिरि छाड़ी अब होब की रानी। हिंदी कवियों में तुलसी ऐसे भावुक के सिवा इस गूढ़ भाव तक और किसी की पहुंच हो सकती है? और कौन ऐसे उपयुक्त पात्र में और ऐसे उपयुक्त अवसर पर उसका विधान कर सकता है? इस उदासीनता के भाव का आविष्कार उन्हीं का काम था। सूरदास ने इसका कुछ आभास मात्र यशोदा के उस संदेश में दिया जो उन्होंने कृष्ण के मथुरा चले जाने पर देवकी के पास भेजा था। संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सूत की कृपा करत ही रहियो। आश्चर्य को लेकर कविजन अद्भुत रस का विधान करते हैं जिसमें कुतूहल वर्धक बातें हुआ करती हैं। पर इस आश्चर्य से मिलता जुलता एक और हल्का भाव होता है जिसे कोई और अच्छा नाम न मिलने के कारण हम चकपकाहट कह सकते हैं और आश्चर्य के संचारी के रूप में रख सकते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने दोनों कोष्टक में वंडर और सरप्राइज में भेद किया है। आश्चर्य किसी विलक्षण बात पर होता है, ऐसी बात पर होता है जो साधारणतः नहीं हुआ करती। चकपकाहट किसी ऐसी बात पर होती है जिसकी कुछ भी धारणा हमारे मन न रही हो और जो एकाएक हो जाए, जैसे किसी दूर देश में रहने वाले मित्र को सहसा अपने सामने पाकर हम चकपका उठते हैं। राम का सेतु बांधना सुन रावण चकपका कर कहता है, बांधे बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्यों निधि कंपति ऊदधि पयोधि नदीस। यह ऐसा ही है जैसा सहसा किसी का मरना सुनकर चकपकाकर पूछना, अरे कौन? राम प्रसाद के बाप, माता प्रसाद के लड़के, शिव प्रसाद के भाई, अमुक स्टेट के मैनेजर। इस भाव का प्रत्यक्षीकरण भी यह सूचित करता है कि गोस्वामी जी सब भावों को अपने अंतःकरण में देखने वाले थे, केवल लक्षण ग्रंथों में देखकर उनका सन्निवेश करने वाले नहीं। दूसरों का उपहास करते तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, पर कभी आपने मनुष्य की उस अवस्था पर भी ध्यान दिया है जब वह पश्चाताप और ग्लानिवश अपना उपहास आप करता है। पृष्ठ 69। गोस्वामी जी ने उस पर भी ध्यान दिया है, उनकी अंतर्दृष्टि के सामने वह अवस्था भी प्रत्यक्ष हुई है। सोने के हिरण के पीछे अपनी सोने की सीता को खोकर राम वन वन विलाप करते फिरते हैं। मृग उन्हें देखकर भागते हैं और फिर जैसा कि उनका स्वभाव होता है थोड़ी दूर पर जाकर खड़े हो जाते हैं। इस पर राम कहते हैं, हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं ही तुम कह भय नाही। तुम आनंद करहूँ मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। कैसी झोबफूड़ आत्मनिंदा है। यहाँ एक और बात ध्यान देने की है, कवि ने मृगों के ही भय का क्यों नाम लिया? मृगियों को भय क्यों नहीं था? बात यह है कि आखिर की यह मर्यादा चली आ रही है कि मादा के ऊपर अस्त्र न चलाया जाए। शिकार खेलने वालों में यह बात प्रसिद्ध है। यहाँ गोस्वामी जी का लोक व्यवहार परिचय प्रकट होता है। देखिए श्रम की व्यंजना किस कोमलता के साथ गोस्वामी जी करते हैं। सीता लक्ष्मण के साथ पैदल वन की ओर चली है। क पूर ते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वे झलकी भरी भाल कनी जल की पूट सुखी गए मधुरा धर द्वे फिरी बूझती हैं चलनो अब कित की पर्ण कुटी करिहों कित हुए लेकी लखी आतुरता पिए की अखियां अतिचारु चली जल चुए। ख जल को गए लखन है लड़का परिखो पिए छाह घरिक वे ठाड़े पोछी पसेऊ व्यारी करो और पाय पखारी हो भूभरी ढाहे तुलसी रघुबीर प्रिया अस्त्रन जान के बैठी बिलंक ली कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबारी बिलोचन बाढ़े। कुलवधु के श्रम की यह व्यंजना कैसी मनोहर है। यह श्रम स्वतंत्र है, किसी और भाव का संचारी होकर नहीं आया है। गोस्वामी जी को मनुष्य की अंतः प्रकृति की जितनी परख थी उतनी हिंदी के और किसी कवि को नहीं। कैसे अवसर पर मनुष्य के हृदय में स्वभावतः कैसी भाव उठते हैं इसकी वे बहुत सटीक कल्पना करते थे। राम के अयोध्या लौटने पर जब सुग्रीव और विभीषण ने राम और भरत का मिलना देखा तब उनके चित्त में क्या आया होगा यह देखिए। सघन चोर मृग मुदित मन धनी गही ज्यो फेट त्यों सुग्रीव विभीषण नहीं भई भरत की भेंट। रास्ते भर वे बहुत ही प्रसन्न आए होंगे और राम के साथ रहने के कारण अपने को गौरवशाली शायद साधु और सज्जन भी समझते रहे होंगे। पर यह महत्व उनका निज का अर्जित नहीं था, केवल राम की कृपा से मिला हुआ था। वे जो उसे अपना अर्जित समझते आ रहे थे यह उनका भ्रम था। उनका यह भ्रम राम और भरत का मिलना देखकर दूर हो गया। वे ग्लानी से गड़ गए। उनके मन में आया कि एक भाई भरत है और एक हम लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार किया। पृष्ठ 70। इस प्रसंग को समाप्त करने का वादा शायद अभी किया जा चुका है, बस दो बातें और कहनी हैं। कवि लोग अर्थ और वर्ण विन्यास के विचार से जिस प्रकार शब्द शोधन करते हैं उसी प्रकार अधिक मर्म स्पर्शी और प्रभावो उत्पादक दृश्य उपस्थित करने के लिए व्यापार शोधन भी करते हैं। बहुत से व्यापारों में जो व्यापार अधिक प्राकृतिक होने के कारण स्वभावतः हृदय को अधिक स्पर्श करने वाला होता है, भावुक कवि की दृष्टि उसी पर जाती है। यह चुनाव दो प्रकार से होता है। कहीं तो पहला चुना हुआ व्यापार उपस्थित प्रसंग के भीतर ही होता है या हो सकता है, अर्थात उस व्यापार और प्रसंग का व्यापक संबंध होता है और वह व्यापार उपलक्षण मात्र होता है। और कहीं दूसरा चुना हुआ व्यापार प्रस्तुत व्यापार से सादृश्य रखता है, जैसे अन्योक्ति में। गोस्वामी जी ने दोनों प्रकार के चुनाव में अपनी स्वाभाविक सहृदयता दिखाई है। एक प्रथम पद्धति का अवलंबन ऐसी स्थिति को अंकित करने में होता है जिसके अंतर्गत बहुत से व्यापार हो सकते हैं और सब व्यापारों का वाच्य एक सामान्य शब्द हुआ करता है, जैसे अत्याचार, दैन्य, दुख, सुख इत्यादि। अत्याचार शब्द के अंतर्गत डांटने डपटने से लेकर मारना, पीटना, जलाना, स्त्री बालकों की हत्या करना, न जाने कितने व्यापार समझे जाते हैं। इसी प्रकार दीन दशा के भीतर खाने पहनने की कमी से लेकर द्वार द्वार फिरना, दांत निकालकर मांगना, किसी के दरवाजे पर अकड़कर बैठना और हटाने से भी न हटना, ये सब गोचर दृश्य आते हैं। इन दृश्यों में जो सबसे अधिक मर्म स्पर्शी है, भावुक कवि उसी को सबका उपलक्षण बनाकर स्थिति को हृदयंगम करा देता है। गोस्वामी जी ने अपने दैन्य भाव का चित्रण स्थान स्थान पर इसी पद्धति से किया है। कुछ उदाहरण लीजिए। कहाँ न कियो, कहाँ न गयो, शीश काही न नायो, हा हा करी दीनता कही, द्वार द्वार बार बार, परी न छार मुह बायो। महिमा मान प्रिय प्राण ते तजी, खोली खलन आगे खिनु खिनु पेट खलायो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुलसीदास जी सचमुच द्वार द्वार पेट खलाते और डांट फटकार सुनते फिरते थे। कहीं राजा राम के द्वार पर खड़े अपनी दीनता का चित्र आप देखते हैं। राम सो बड़ो हैं कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरु हैं कौन, मोसो कौन खोटो। सारी विनय पत्रिका का विषय यही है, राम की बड़ाई और तुलसी की छोटाई। दैन्य भाव जिस उत्कर्ष को गोस्वामी में पहुंचा है, उस उत्कर्ष को और किसी भक्त कवि में नहीं। इस भाव रहस्य से अनभिज्ञ और इस उपलक्षण पद्धति को न समझने वाले ऊपर के पदों को देख यदि कहें कि तुलसीदास जी बड़े भारी मंगन थे, हटाने से जल्दी हटते नहीं थे और खुशामदी भी बड़े भारी थे, तो उनका प्रतिवाद करना समय नष्ट करना ही है। खेद इस बात पर अवश्य होता है कि स्वतंत्र आलोचना का ऐसा स्थूल और भद्दा अर्थ समझने वाले भी हमारे बीच वर्तमान हैं। एक स्थान पर गोस्वामी जी कहते हैं, खिजिए लायक करतब कोटि कोटि कटु, रिजिए लायक तुलसी की निलजई। पृष्ठ 71। इस पर यदि कोई कह दे कि तुलसीदास जी बड़े भारी बहया थे, तो उसकी क्या दवा है? तुलसीदास जी को जब स्वामी के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता की इस प्रकार प्रतीति हो जाती है कि जानत जहान मन मेरे हूँ, गुमान बड़ी मान्यो मैं न दूसरो, न मानत न मानिहो, तब प्रेमाधिक्य से वे मुँह लगे हो जाते हैं और कभी-कभी ऐसी बातें भी कह देते हैं, हौं अब लौ करतुती, तिहारिह चित्रवत हुतो न रारवरे चेते, अब तुलसी पुत्रो बांध ही सही न जात मोपे परिहास एते। पर ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करते कि आपने करम भवनिधि पार करो, जो तो हम करतार करतार तुम काहे के। देखिए संसार की अशांति का चित्र कैसा मर्म स्पर्शी और प्राकृतिक जीवन व्यापार उपलक्षण के रूप में चुनकर वे अंकित करते हैं। डासत ही गई बीती, निशा सब कतहु न नाथ, नींद भरी सो। दूसरा, प्रस्तुत व्यापार के स्थान पर उसी के सदृश अप्रस्तुत व्यापार चुनने में भी गोस्वामी जी ने प्रभावों उत्पादक प्राकृतिक दृश्यों को परख का पूर्ण परिचय दिया है। प्रेम भाव का उत्कर्ष दिखाने के लिए उन्होंने चातक और मीन को पकड़ा है। दोहावली के भीतर चातक की अन्योक्तियाँ प्रेमी भक्तों के हृदय का सर्वस्व है। यही चातकता और मीनता वे जीवन भर चाहते रहें। करुण निधान वरदान तुलसी चहत सीतापति, भक्ति सुरसरी नीर मीनता, अन्योक्ति आदि के लिए भी वे तत्काल हृदय में चुभने वाला दृश्य लाकर खड़ा कर देते हैं। इससे प्रस्तुत विषय के संबंध में जो भाव उत्पन्न करना इष्ट होता है, वह भाव थोड़ी देर के लिए अवश्य उत्पन्न होता है। प्रासादों में सुख से रहने वाली सीता वन में कैसे रह सकेगी? नवरसाल बन विहरण सीला, सोह की कोकिल विपिनी करीला।